ओम शांति। कहते हैं जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वो पेड़ उतना ही मजबूत और टिकाऊ होता है। वैसे ही जिस भवन की नींव जितनी गहरी होती है वो भवन उतना मजबूत है ना, उतना ही मजबूत वो भवन होता है। कहते जिस संगठन में जो निमित्त आत्माएं हैं उनका जितना त्याग और तप गहरा होता है वो संगठन उतना शक्तिशाली, दीर्घजीवी और निर्विघ्न होता है। तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ऐसा अद्वितीय संगठन है जिसके आदि रतन, उनकी एक एक के जीवन की गाथा हम कहें तो एक एक भागवत हो जाए, जिनके त्याग और तपस्या में जीवन, जिन्होंने अपने आप को गुप्त रखकर, अपने त्याग को गुप्त रखकर, अथक होकर, निस्वार्थ भाव से श्वासोश्वास श्रीमत प्रमाण परमात्मा शिव की, जो निराकार शिव बाबा की, जो ब्रह्मा बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम से जो एक एक श्रीमत मिले, उस श्रीमत प्रमाण पूरे विश्व की मानवता की, जिन्होंने आध्यात्मिक सेवा की। आज वो भले साकार तन में नहीं है वो आदि रतन, लेकिन अपनी उच्च धारणाओं के कारण, अपने ऐसे अनमोल जीवन के कारण आज भी हमारे दिलों के बहुत समीप हैं। साकार शरीर में न होते भी उनका जो कर्तव्य शरीर कहो, उनका यश शरीर कहो, या उनका धारणाओं का शरीर कहो, उस माध्यम से, उस रूप में वो आज भी हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम सभी आदि रत्नों की श्रृंखला में आज ऐसे ही पद्मा पदम भाग्यशाली एक आदि रत्न के बारे में आज जानना चाहेंगे। हमारे आदरणीय सुभाष भाई जी, जो 35 वर्षों से वरिष्ठ भाई हमारे ज्ञान सरोवर में, जो 35 वर्षों से हमारे पांडव भवन ज्ञान सरोवर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आप इन दादियों के बहुत समीप रहे, उनके संग रहकर आपने एक एक धारणाओं को, परमात्मा की एक एक श्रीमत को उनके जीवन में साकार देखा, आपने पग पग उनका मार्गदर्शन लिया, आपके अपने जीवन के भी आध्यात्मिक मूल्य आपने उनको देखकर अपने जीवन में लाए, दादियों का प्यार और विश्वास आपने हासिल किया। तो हमारी लच्छू दादी, आज हम सभी हम आदरणीय राजयोगिनी लच्छू दादी को याद कर रहे हैं और उनके जीवन के बारे में, उन्होंने किस प्रकार से छोटेपन की आयु में संस्था में आए और 80 साल तक का उनका जो जीवन, 80 साल की उम्र में उन्होंने ये भौतिक देह त्याग किया। मुझे जो व्यक्तिगत लच्छू दादी के जीवन की बहुत जो आकर्षित करने वाली बात लगती है, जैसे 80 साल की उम्र में भी उनका जैसे 5 साल के बच्चे जैसा निर्मल जीवन, उनकी स्वच्छता, उनके जीवन का, उनकी, उनका जैसे जीवन देख के ही लगता है कि कितनी निर्दोष जीवन रही है उनके। तो ऐसी निर्मल स्वच्छ जीवन वाली आदरणीय लच्छू दादी जी का पूरा जीवन हम सुभाष भाई जी के अपने अनुभवों से साकार करेंगे हम सभी, क्योंकि इन महान आत्माओं के गुणों को हम जितना चिंतन करेंगे उतने ही वैसा हम गुणवान बनेंगे, है ना। तो हम उनके कर्तव्यों को भी याद करेंगे और उनके जीवन से भी हम प्रेरणा लेंगे और यही उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो मैं आदरणीय सुभाष भाई से अनुरोध करता हूँ कि पहले हमें लच्छू दादी जी का पूरा जीवन परिचय दें।
थैंक यू गोविंद भाई। वैसे देखा जाए तो आदि रत्न जिसको हम कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत की है। जब संस्था में ऐसी चीजें भी नहीं थी, परिस्थितियां भी नहीं थी, और ऐसे समय भगवान को पहचान के उनके पर बलिहार होना वो बहुत बड़ी बात थी। जैसे आपने कहा कि लच्छू दादी, तो आप सभी ने यीशु दादी को भी देखा होगा, किसी कोई मिले भी होंगी, हमारे जो भंडारी का जो कारोबार संभालते थे, हम उनको कोषागार भी कहते थे, तो उनकी वो छोटी बहन थी। और उनकी शुरुआत में वो केवल 5 साल की थी, तो हमने देखा कि भगवान को अपना बनाना होता है तो अपने बच्चों का कितना ध्यान रखते हैं। तो वो केवल 5 साल की थी तो अपने गैलरी में, तीसरी मंजिल की गैलरी में खेल रही थी और वहां से गिरी नीचे और एक भाई के कंधे पे गिर गई। तो फिर नेक्स्ट, मतलब जब उनका 6वां साल था तो बाबा का ज्ञान उनको मिला, उनकी मम्मी को, और मम्मी के साथ वो जाते थे ओम मंडली में। अब वो 6 साल की बच्ची क्या करेगी? तो जब ये सत्संग चलता था तो सत्संग चलते समय सब माताएं और बाबा ओम की ध्वनि करते थे। जब बाबा ओम की ध्वनि करते थे तो ये छोटी सी 6 साल की बच्ची धीरे 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 बाबा के पास जाती थी और बाबा के गोद में बैठ जाती थी। और उसको ऐसा एहसास हुआ कि यही मेरे पिताजी, यही मेरे बाप है, यही मेरे सब परिवार है। और धीरे धीरे वो अपना जीवन और विशेष करके ब्रह्मा बाबा को ये प्रेरणा आई, ये छोटे छोटे बच्चे तो को यहाँ रहे, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो एक संकल्प बाबा के मन में आया कि क्यों नहीं बच्चों की बोर्डिंग खोले। तो ये मतलब बच्चों को देख के बाबा को ये संकल्प आया, क्योंकि बाबा ने परिवार के हिसाब से उन्होंने 3 बड़े बड़े मकान, एक ही मकान था लेकिन 3 पोर्शन थे, लेकिन जब बाबा का परिचय हो गया तो सब चेंज हो गया, तो एक मकान पूरा फिर ये बोर्डिंग के हिसाब से। तो ये जैसे लच्छू दादी जो है एक जैसी प्रेरणा, जैसे ना बच्चे को देखा तो क्यों नहीं हॉस्टल खोला जाए, तो इस प्रकार से इनकी शुरुआत हुई थी।
जैसे कहते हैं बाल्यकाल ही होता है जब व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का पूरा जो एक आधार होता है। तो बोर्डिंग जब शिव बाबा की प्रेरणा से ब्रह्मा बाबा ने साकार में जब वो बोर्डिंग खोला, तो बच्चों की दिनचर्या कैसे रहती थी वहां पे?
शुरू में जो बच्चों के बोर्डिंग खोली बाबा को बहुत अच्छी प्रेरणा आई और शिव बाबा ने बाबा को प्रेरणा दी होगी, तो इनके रिलेशन में और जो माताएं आती थी सत्संग में, तो करीब करीब 75 बच्चे, वो मतलब बच्चियां थी
10 साल की उम्र के अंदर,
छोटी मतलब कोई 6 साल को 7 साल 8 साल ऐसे, तो ये और 5 बच्चे थे उसमें। तो इस प्रकार ये बोर्डिंग शुरू होगी। तो हमें लच्छू दादी बताती थी कि हमारी जो पालना जो हुई, 5 दादियां होती थी और 5 माताएं होती थी इनका सब संभाल करने के लिए, लेकिन कोई राजकुमार राजकुमारी की जैसे पालना, सुबह उठते थे तो उठ जाओ राजकुमारी ऐसे गीत होता था, हा? और फिर सुबह उनको एक्सरसाइज कराते थे, फिर वॉकिंग के लिए लेके जाते थे, वॉकिंग के बाद आके फिर स्नान पानी करके दूध। और दादी बोलती थी हमको शहद में बादाम डाल के हमको, ये बहने इतनी सेवाएं करती थी। और बाबा का ज्ञान भी छोटी छोटी स्टोरिया कि आत्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कहाँ रहता है, जैसे हमारी चंद्रमणि दादी जी उनके टीचर थी, ऐसे 5 टीचर, तो वो लोग छोटे छोटे ऐसे स्टोरी बनाते थे और बच्चों को सिखाते थे। और सप्ताह में 2 बार तेल मालिश होती थी इनकी, तेल मालिश, तो ऐसे। और मच्छरदानी, हर एक बच्चों को मच्छरदानी। और जब पूरा दिनचर्या पूरी होती थी और एक टाइम बाबा बच्चों के साथ भोजन करते थे, भोजन करके फिर बच्चों के साथ स्टोरी लेन देन इस प्रकार की बातें हो जाती थी। और जब वो लास्ट में सोने के लिए जाते थे हा? तो मच्छरदानी के अंदर सो जाते थे, मतलब बैठ जाते थे, फिर बाबा आते थे और उस समय वो जो गीत है सोजा राजकुमारी सोजा, तो वो गीत के साथ बाबा एक एक बच्चे को दृष्टि देते थे। तो इस प्रकार ये जो हमारी दादियां बनी, जो हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में, उनकी पालना मम्मा बाबा और दादियों ने इस प्रकार से की कि कोई एक राजकुमार राजकुमारी की पालना हो इस प्रकार से।
माना बाबा बचपन से ही इनके तन का और मन का दोनों स्वास्थ्य का ध्यान देते थे और पढ़ाई भी केवल ज्ञान का ही नहीं, आध्यात्मिक ही नहीं, जो लौकिक पढ़ाई होती थी वो भी उनको पूरी
साथ,
इंग्लिश हिंदी जो भी जो सब्जेक्ट होते हैं लौकिक दुनिया के वो भी पढ़ाई, माना दोनों पढ़ाई उनकी,
दोनों पढ़ाई। और वो पांच जो दादियां थी
हाँ।
यहाँ भी पढ़ाती थी, लौकिक स्कूल में भी जाती थी हाँ। यहाँ भी पढ़ती थी, इस प्रकार बहुत अच्छी पालना होती थी।
और सुभाष भाई जी, आपकी मुलाकात लक्षु दादी से कब कैसे हुई?
मैं 1983 की बात है, मैं पहली बार ये मधुबन आया था 10th की एग्जाम देके। तो पहली बार आया और पहली बार मुझे 2 मास सेवा के लिए चांस मिला। अभी मुझे सब दादियों से परिचय भी नहीं था, कौन दादी क्या। तो हम भोलेनाथ के भंडारे में भोली दादी के पास सेवा करते थे। तो एक दिन की बात है, मोहन मोहिनी दीदी चक्कर लगाने कभी कभी आते थे। तो हम वहाँ सेगड़ी के चारों तरफ, मैं था और हमारे साथ साथ 10-12 मधुबन निवासी थे। अब क्या हुआ, किसी ने बताया, आवाज दी, दीदी आ रही है। जैसे दीदी आ रही, मनमोहिनी दीदी के लिए जैसे बोला दीदी आ रही, तो सारे मधुबन निवासी तो भाग गए वहां से, कोई भी नहीं था उधर। मैं सोचा क्या हो गया, कौन दीदी है, क्या है ऐसे। तो मैं तो अपना वहां खड़ा था। तो इतने में लच्छू दादी दीदी को हाथ पकड़ के वहां भंडारे में लेके आए और दीदी ने मुझे पूछा, क्या नाम है, कहाँ से आए हो। तो अभी मैं तो इतना मतलब ये नहीं था, तो थोड़ी जो पूछा वो बता दिया। फिर लच्छू दादी ने कहा, दादी ये नया नया सेवादारी है ना, इसको कुछ पता नहीं है। तो उधर सपोर्ट उन्होंने लच्छू दादी ने दिया। फिर लच्छू दादी उनको लेके पूरे भंडारे में चक्कर लगाए। तो ये पहली बार जो मुलाकात, ये लच्छू दादी और ये मनमोहनी दीदी। तो मैंने देखा कि लच्छू दादी कितना प्रेम से दीदी की भी सेवा करते थी, घुमाना फिराना और सबको परिचय कराना। तो ये मेरी पहली मुलाकात लच्छू दादी से वहां हुई थी।
हम लोगों ने एक ब्लैक फोटो जो देखा, साकार बाबा के जो फोटो, तो साकार बाबा भोजन कर रहे हैं, तो सिंघी खा रहे हैं शायद ऐसा,
हिस्ट्री हॉल में,
हिस्ट्री हॉल में, और लच्छू दादी बगल में बैठी हुई हैं। तो ब्रह्मा बाबा के साथ जो उनका पार्ट रहा सेवा का, वो किस प्रकार का?
एक्चुअली जब से यज्ञ की शुरुआत हुई तब से ब्रजेंद्रा दादी और संतरी दादी बाबा का विशेष ध्यान रखते थे। मतलब वहां से फिर ब्रज कोटी में आए तभी वही रखते थे। लेकिन ब्रज कोटी से जो कोटा हाउस है, जहां भी राजस्थान सर्किट हाउस, वहां आने के बाद क्या हुआ, ये हमारी जो दादियां है संतरी दादी, ये बाहर सेवा में गई। तो सबको पता है लच्छू दादी तो बहुत चुस्त दुरुस्त है, तो उनका ड्यूटी लगाई। तो ये बाबा का भी ध्यान रखते थे, बाबा का ख्याल रखना, फिर और भी बहुत सारी चीजें है वो दीदी अपनी लच्छू दादी को सेवाएं मिल गई। तो शुरू से ही उनके अंदर एक चुस्तपना, एक सेकंड में यहां से यहां, वहां से वहां, पूरा मधुबन फटाफट, कोई भी काम बाबा बोलते बच्ची उसको बुलाओ तो दौड़ के उसको बुलाते थे। तो इस प्रकार लच्छू दादी का ये काम होता था। और बाबा के साथ रहने से, भाई कोई आया बच्चे को कुछ सौगात देना है, किसी को कुछ देना है, तो वही लच्छू दादी सारा काम करती थी। तो यहां से फिर बाबा के साथ इनका पार्ट शुरू हो गया। फिर दादी कई भोजन भी मनाती थी, भोजन खिलाने का तो आपने बता दिया। फिर साथ साथ जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है, वो भी संभालती थी।
जैसे दादी का हम देखते हैं कि उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि एक उनका बचपन से ही जो उनका स्वच्छता का नेचुरल गुण था, शायद इसीलिए भोजन की जिम्मेवारी भी जैसे ना दादियों ने ब्रह्मा बाबा की उनको दी थी। कहते उनकी अलमारी आप देखो तो ऐसा लगेगा जैसे मशीन से, माना इतना एक्यूरेट, हाथ से तो थोड़ा कपड़े की सब हिल सकता है, लेकिन कहते उनके कमरे में उनकी अलमारी भी यदि आप देखो उनके जो व्यवस्थित है, माना उनका हर कार्य स्वच्छ और पूरा व्यवस्थित जैसे।
इसके कारण क्या था उनको फिर ये स्टोर माना जो फैंसी सामान मिलते हैं जैसे छतरी, जूते, चप्पल, ये सारी चीजें, और वो एक एक को जो चीज देती थी इतना प्यार से समझाती थी, ये चप्पल है बाबा के घर का है संभाल के यूज करना, ये छतरी है संभाल के यूज करना, और जब दूसरी ये वापिस लाएंगी ना तब दूसरी दूंगी, मतलब 2-3 साल के बाद भी। तो फिर इनके पास ड्राई फ्रूट का स्टोर होता था ऐसे ही ड्राई फ्रूट, क्योंकि कभी कभी ऐसा ये हो जाता ना, एक बार क्या था हमारे भंडारे में ब्रेड की बेकरी थी, बेकरी तो ये किशमिश है ना थोड़ा गीला हो गया था, तो एक वो 2-3 ट्रे लेके आई लच्छू दादी। अभी इतना सबको ज्ञान नहीं था ना वो बेकरी में कितना हीट होता है, तो हम लोग वो जो ड्राई फ्रूट है मतलब किशमिश है ना वो उसमें डाला 2-3 ट्रे और सूख जाएगा आराम से, तो जब 2-3 घंटे में देखा तो वो पूरा जल गया था। तो कई बार ऐसी भी चीजें, क्योंकि अनुभव नहीं होता है ना, तो इस प्रकार की भी चीजें होती है। तो ऐसे ही जैसे तेल चाहिए, साबुन चाहिए, कोई छोटी चीजें चाहिए, तो ये लच्छू दादी पूरा ध्यान। और आपको पता होगा सबसे मेन, आप सभी ने देखा होगा कि कैसे भोग लगाने के समय, तो उसके अंदर इतनी साफ सुथरा स्वच्छता होने के कारण हर गुरुवार को जब बाबा को भोग लगाते हैं तो पूरा क्लीन साफ सुथरा रह के अमृत बनाना बराबर उनका, जैसे बाबा ने सिखाया ना वैसे बराबर अमृत बनता था, कभी मीठा कभी ये ऊपर नीचे नहीं, एकदम परफेक्ट। तो इस प्रकार फिर जैसे भोग लग जाता था तो भोग उठा के फिर भंडारे में लेके जाना, फिर बाबा के बड़े भंडारे में डालना, तो ये जो भागदौड़ का काम है ना वो दादी बहुत एक्यूरेट करती थी।
साकार ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उनकी सेवाओं में क्या, जब अव्यक्त हुए ब्रह्मा बाबा
जी
तब उनकी सेवाएं किस प्रकार की?
हाँ, तो क्या हुआ जैसे ही साकार बाबा के साथ थे, साकार बाबा अव्यक्त हो गए तो वो पूरा चीज ट्रांसफर हो गया मनमोहिनी दीदी के, अभी वो मनमोहिनी दीदी के साथ रह के पूरा मनमोहिनी दीदी का ध्यान रखते थे। जैसे क्लास में मनमोहिनी दीदी क्लास में होते तो 10 मिनट पहले वो डायरी पेन लेके वो सीट पे रखती थी, फिर दीदी को लाने जाती थी, मतलब ये नहीं कि कभी भी आए कभी गए ऐसा नहीं, 10 मिनट पहले आके। तो इस प्रकार दीदी के साथ उनका पूरा मतलब गहरा रिलेशन, आप जो अभी दादी का ऑफिस बोलते या सामने है वहीं दीदी रहते थे और बाबा का कमरा उसके बाजू में, मतलब तो दीदी क्योंकि सह प्रशासिका बनी थी जब ब्रह्मा बाबा ने, लेकिन जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो दीदी और बाबा दोनों मिला के यज्ञ पर पूरा संभालते थे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर लच्छू दादी का पार्ट उधर मनमोहिनी दीदी के साथ, और मनमोहिनी दीदी के साथ उन्होंने पूरा, जैसे कि माँ और बेटी लगती थी, हम देखते थे ना दीदी को साथ लेके आते थे कि माँ और बेटी कैसे आ रहे और जो भी बात करना है जो भी भोग का, फिर दीदी का मैसेज दादी तक पहुंचाना, दादी का मैसेज दीदी तक पहुंचाना, ये सारा काम है ना ये लच्छू दादी करती थी।
माना उन्होंने हर एक के साथ एक्यूरेट पूरी जिम्मेवारियां निभाते हुए उन्होंने ये कार्य किए। अव्यक्त होने के पश्चात ब्रह्मा बाबा के जैसे विदेश की सेवाएं भी आरंभ हुई, तो ऐसा कोई अनुभव है, एकाध ऐसा कोई मौका रहा जब लच्छू दादी विदेश गई?
हाँ, वैसे तो उनका इधर उधर जाने का कभी मन नहीं होता था, लेकिन 1981 में प्रकाशमणि दादी के साथ विदेश जाने का उनका मौका मिला, तो शायद अमेरिका गए थे वो लोग, तो बहुत ही अच्छी सेवाएं हुई। जब वापिस आए तो जब बाबा से मिल रहे थे वो, तो बाबा से मुलाकात हुई। बाबा ने कहा देखो बड़ों के साथ रहने से शेर मिल जाता है, भाग्य मिलता है, बड़ों के साथ रहने से, बड़ों की सेवा करने से आपका अपना आप कैसे भाग्य खिल जाता है, खुल जाता है। तो अविक्त बाबा ने खूब उनकी महिमा की,
सीखने को भी मिलता है बड़ों के साथ जाना माना।
तो बड़ों के साथ जाना माना एक सेवा का एक अलग रूप भी बन जाता है। तो ये एक सौभाग्य भी है कि भाई बड़ों के साथ रहने से आप हम भी देखते हैं कैसे सौभाग्य मिल जाता है।
जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ भी दादी होते थे, तो ऐसा कोई विशेष प्रसंग जो और कोई आपको याद आ रहा हो?
हाँ, एक्चुअली लच्छू दादी बाबा का इतना ध्यान रखती थी, तो क्या हुआ एक माता पंजाब की माता कोई आई थी बाबा के लिए, मैं स्वेटर बना के ले जाओ, तो वो एक माता बाबा को स्वेटर दिया, तो बाबा ने माता जी के सामने पहन लिया, तो माता जी बहुत खुश हो गई। माता जी चले गई, जाने के बाद 5 मिनट के बाद कोई भाई आया, बुजुर्ग भाई थे, उनको बहुत ठंडी लग रही थी, तो ठंडी लग रही थी तो बाबा ने स्वेटर उतारा और बच्चे ये लो पहन लो। तो वो लच्छू दादी उधर ही थी, तो लच्छू दादी बाबा ये आपके लिए दे, बाबा आपके लिए दिया, ये माता जी इतना प्यार से बना के। तो बाबा बोलते देखो ये मेरी नानी मुझे सिखाती है मुझे क्या करना है। तो बाबा को भी मतलब जैसे नहीं रोग में, बाबा ऐसा नहीं करो, बाबा इधर नहीं जाओ, बाबा ये नहीं करो। तो बाबा कभी, बाबा तो बड़ा दिल है, बाबा तो त्रिकालदर्शी सब जानते थे, तो उसको भी मतलब लच्छू नानी उनको टोक कर सही ये की थी, वो दादी को बाबा को टोकती थी वो लच्छू दादी, इसलिए बाबा बोलता है ये मेरी नानी है नानी।
साकार ब्रह्मा बाबा कोई भी वस्तु किसी भी आत्मा को देते थे, इसलिए देते थे कि ताकि उसको जब भी वो चीज उसके पास हो तो उसको बाबा याद आए, हर बात से बाबा जुड़ जाए ऐसा उनकी भावना रहते थे। और लच्छू दादी इतना बड़ा स्टोर आदि संभालते थे हर आत्मा की पालना, जिससे कोई भी स्थूल चीजें और आवश्यकता जो पूर्ति करते थे। तो ऐसी कोई रमणीकता वाली बात आप हमेशा सुनाते हैं कोई हंसी की बात?
एक बार क्या हुआ, ऐसे आपको बताया कि फैंसी सामान कोई भी सामान देते थे उसको प्रॉपर यूज होना चाहिए, वो उनका वो लक्ष्य था। और बाबा के घर की हर चीज कैसे इकोनॉमी के रूप में यूज होना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ, बारिश का सीजन था तो छाते मिल रहे थे सबको, तो छाते मिले थे तो हमारा एक ज्ञानसर के, अभी वो ज्ञानसर में भाई महावीर भाई करके, तो महावीर भाई गए छाता लेने के लिए। तो महावीर भाई को जब छाता दिया लच्छू दादी ने, तो उनका देखो ये बहुत महंगा छाता है, इसको धूप से हवा से बारिश से बचा के रखना ऐसे। तो वो उसने बोला हाँ ठीक है। अब क्या था, वो घूमने के लिए गया और वापिस आ रहा था, पांडव भवन के गेट से वापिस आ रहा था, तो सामने एक जगह बैठने के लिए, वहां लच्छू दादी भी बैठे थे, फिर ईशु दादी, प्रकाशमिनी दादी और हमारे मधुबन के 4-5 भाई वैसे बैठे थे। तो उसने क्या किया, वो छाता है ना वो अपने ऐसे इधर बगल में दबा के आ रहा था और बारिश हो रही थी, तो वो सब लोग हंस रहे थे यार ये क्या छाता दबा के इधर क्या इधर आ रहा है, छाता नहीं खोलना चाहिए के। तो प्रकाशमिनी दादी ने कहा वो लड़के को बुलाओ इधर बुलाओ। तो वो आया, भाई तुमको इतना भी समझ नहीं ये तुम भीग क्यों रहा है कि तुम्हारे पास इतना छाता है। तो उसने बोला दादी जी लच्छू दादी ने बोला इसको बारिश से धूप से सब बचा के रखना है, इसलिए मैं इसको बचा के रखता हूं।
मतलब दादी का ये भाव था कि संभाल के यूज करना, तो 2-3 साल माना आपका ये छाता चलना चाहिए, तो उसको ये था कि छाता खराब हो जाएगा अगर मैं बारिश, क्योंकि 2-3 साल चलाना है तो थोड़ा उसको इकोनॉमी से चलाना है।
तो ऐसे बाबा के घर बच्चे हैं, थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, तो ऐसे
दादियां एक एक तो बहुत महान है। बड़ी दादी के साथ भी आप सब लोगों को बहुत नजदीक की पालना मिली और शायद लक्षु दादी ने भी बहुत कुछ सिखाया आप सबको, भोजन का भी एक अवसर कोई आया था ऐसा।
हमारे पहले मधुबन में नॉन सीजन बोलते थे, नॉन सीजन मतलब ये जब जून जुलाई अगस्त है ना, यहाँ कोई भी प्रोग्राम नहीं होते थे मधुबन में। मैं समझता हूँ 1986 की बात है, और हम अभी समर्पित होने वाले की लिस्ट में अभी आए ही थे नए नए, तो उस समय इतनी सेवाएं नहीं होती थी, इतने गेस्ट नहीं आते थे। तो बड़ी दादी मतलब प्रकाशमणि दादी जी ने क्या हुआ, एक प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम क्या बनाया कि सारे, मैं समझता हूँ उस समय करीब 100 लोग थे।
अच्छा, सिर्फ 100 लोग,
100 मधुबन निवासी थे।
निवासी।
तो दादी जी ने कहा कि रोज 5 लोग मेरे साथ भोजन करेंगे, दादी के साथ जो डाइनिंग है वहां भोजन करेंगे, और वो सारा जिम्मेवारी है वो लच्छू दादी को दिया था। तो लच्छू दादी पूरा लिस्ट बनाती थी, हम 5 लोग नए नए लोग थे, तो ढूंढ के भाई तो आपको बराबर 1 बजे डाइनिंग में पहुंचना है। फिर एक के को बताया कैसे, अपने साथ रुमाल रखना, उस समय तो हमारे पास रुमाल भी नहीं होता होगा तो साथ में रुमाल रखना, दादी जो पूछेगी वो जवाब देना, ज्यादा बोलना नहीं, शांत मतलब जैसे एक
सारी बात।
इतनी बड़ी महान विभूति प्रकाशमणि दादी के साथ हमारा भोजन है, तो पूरा ऐसे, तो हम लोग तो भाई उधर ही 10-15 मिनट पहले ही इधर चक्कर काटने लगे, तो भाई टाइम लेट नहीं होना चाहिए तो वहां पहुंच गए। जो आप पांडवों का आंगन है वही दादी का डाइनिंग था, तो वहां पहुंचे हम लोग आराम से बैठे, पहली बार जिंदगी में प्लेट बीट सजा के सामने, पोछी हुई थाली सामने थी, भोजन था। फिर हम लोग इंतजार कर रहे थे, इतने में ईशु दादी और हमारी प्रकाशमणि दादी जी पहुंचे, फिर हम लोग खड़े हो गए, ओम शांति हुआ। फिर दादी ने कहा बैठो बैठो, फिर दादी ने एक एक का परिचय पूछना शुरू किया। अच्छा, उसमें से हम एक दो लोग तो बोलने वाले थे कुछ बोलने, फिर वो सपोर्ट हमारी लच्छू दादी करती, इसका ये नाम है फलाने की जगह सेवा करता है, ये करता है, ये पूरा ऐसे। तो जब हम भोजन करे तो हमारा भोजन का हाँ ध्यान, दादी बैठी है बाजू में, दादी यही खुशी मतलब वो बहुत बड़ी बात थी। तो दादी जी ने कहा देखो आप तो बच्चे लोग हैं, आप आराम से खाना, दादी तो एक ही फुल्का खाती है। फिर दादी जी ने हम सबका एक एक का परिचय, कहाँ से आए, कहाँ रहते, क्या करते, पढ़ाई कितनी की, मतलब एक एक चीज सबसे पूछ के, फिर लास्ट में फिर लच्छू दादी फिर आम काट के लाई, फिर आम खाया। तो हमारे जिंदगी का वो सबसे बड़ा टॉप का दिन था, जो बड़ा इतना बड़ा VIP या हमारी दादी, उसके साथ हमारा भोजन।
बहुत सुंदर। ये जैसे आपने एक और प्रसंग बताया था स्टोर का, जब लच्छू दादी के साथ कोई प्रेम भाई का भी था।
मधुबन तो बहुत छोटा घर था ना, तो हम लोग साथ दे जाते थे, तो लच्छू दादी मोहिनी बहन मुन्नी बहन या प्रकाशमणि दादी के साथ वो आते थे घूमते थे। तो हम लोग एक बार क्या हुआ, दादी जी डाइनिंग में आए, तो दादी ने मुझे पूछा क्या भोजन बना है, तो हम तो बोले हाँ दादी चावल बना है, दाल बनी है, सब्जी बनी है, रोटी बनी है। तो वो लच्छू दादी साथ, अरे बुद्धू ऐसे नहीं बताया जाता है, कैसे वही तो बना हुआ है, हमें पता ही नहीं था कैसे बताना होता है। फिर दादी जी ने हमको बताया देखो चावल तो रोज ही होता है, वो बताने की जरूरत नहीं, आप बोलो कि आज बैंगन की सब्जी बनी है, पनीर की सब्जी बनी है, हाँ वेजिटेबल पुलाव बना है, आलू का पकोड़ा बना है, ये दो तीन चीजें हैं ना, और मूंग की दाल बनी है, मतलब जो चीजें बतानी है, रोटी रोज होती है, चावल रोज होता है, रोज वाली चीजें बताने की जरूरत नहीं, लस्सी है ये बताने की जरूरत नहीं। तो उस समय हमें लच्छू दादी ने एक मतलब सिखाया समझाया कि नहीं ऐसा बताया जाता है, दादी जी ने बताया। और जब भी मधुबन छोटा घर था ना, तो एक जो टेलर डिपार्टमेंट है ना, वहां एक स्टोर बन रहा था, छोटा सा स्टोर था, मतलब मैं समझता हूँ पांच बाय पांच का भी हम जाते तो याद आती हुई चीजें। तो मैं और हमारा सतीश भाई है ना जो गीत गाते हैं, उनका भाई प्रेम भाई वो बर्तन विभाग संभालते थे। तो वो ऐसे ही बन गया था स्टोर में ना, कुछ ऐसी चीज बनी तो वो एक जगह बन गया था, तो ऐसे बन गया था। तो क्या हुआ, लच्चू दादी ने दादी को बोला, दादी ये स्टोर मुझे चाहिए। तो दादी ने कुछ बोला नहीं, तो हम लोग ऐसे वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, मैं और प्रेम भाई भी थे, लच्छू दादी भी साथ में, दादी भी थी। तो जैसे ही लच्छू दादी दूर गई ना, तो दिखाया, मतलब दिखा दिया ये स्टोर बन गया। तो दादी ने चुपके से बोला, प्रेम इसको ताला लगा दिया ना ऐसे, क्योंकि वो बुकिंग किया था लच्छू दादी ने, मेरे को चाहिए। तो दादी ने चुपके से इशारा दिया, फिर हम लोगों ने ताला लगा दिया उधर, ताला लगा दिया। फिर बाद में लच्छू दादी बड़ी दादी के पास गई, दादी वो प्रेम ने ताला लगा दिया उधर स्टोर को। तो दादी ने, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, उसको जरूरत होती हुई ना, कोई बात नहीं, कोई बात, आपके तो पास तो दूसरा है ही ना अभी, ऐसे करके दादी युक्त। देखो वो तो साथ रहती है, तो भी दादी उनके साथ भी, हम लोगों के साथ भी इतना प्रेम प्यार से युक्त चलती थी वो। मतलब अभी तक हमें जब भी वहां जाते ना, तो टेलर डिपार्टमेंट अभी भी याद आता है, तो उसमें हम लोग बाल्टिया, लुडने, करचिया आदि चीजें रखते थे।
हमने यज्ञ में जहाँ ज्यादा जरूरत है उनको भी बुरा न लगे, और दादी बीच का रास्ता
जी,
यज्ञ बड़ा होता गया, जिम्मेवारियां बड़ी होती गई, जगह कम थी, तो जहां ज्यादा जरूरत है वहां दादी पहले प्रायोरिटी देती होंगी। जैसे शुरू में तो ज्यादा इतने गाइड आदि तो होते नहीं थे, जैसे दादियां ही जो पुरानी हैं वो बहुत कुछ सिखाती थी, समझाती थी पूरे यज्ञ में। जैसे नए लोग आते थे तो लच्छू दादी भी उस तरह से सभी को पुरानी बातें याद दिलाती होंगी गाइड की तरह।
लच्छू दादी के साथ नॉर्मली देखो जो साथ में रहता है तो उसको भी कोई काम बताया जाता है, कोई मेहमान आया, कोई विदेश के कोई लोग आए, कोई आए, तो दादी तुरंत, लच्छू जाओ इनको वो दिखाओ, वो दिखा दो। तो लच्छू दादी के अंदर वो कला थी, एक्सपर्ट थी। पहले तो उन्होंने जो बाबा के साथ जो चीज, बाबा की चीजें, जैसे बाबा का जो लिखने का पेन है, पैड है, और जो चौपट है खेलने का, ये सारी चीजें है ना, क्योंकि उसको संभालने की मतलब अच्छी युक्ति थी, संभालने का एक
ब्रह्मा बाबा भी खड़ाऊ और सब,
तो सारी चीजें संभाल के रखती थी। और फिर वो सबको दिखाती थी, विदेशियों को, ये है बाबा का खड़ाऊ, ये है बाबा का शॉल कुर्ता, ऐसे ऐसे चीजें दिखाती थी। और अभी भी मतलब जब तक दादी थी तो 18 जनवरी के दिन झोपड़ी में वो अलग डिस्प्ले किया जाता था, अभी शायद हिस्ट्री हॉल में रखते हैं। तो इसी प्रकार जब विदेशी लोग ब्रुजकोटी, जो सबसे पहले बाबा का यज्ञ यहाँ माउंट आबू में आए थे, तो वो दिखाने के लिए, कि तो फिर लच्छू दादी के साथ हम लोग भी जाते थे, तो लच्छू दादी एक एक चीज एक्यूरेट, ये बाबा का कमरा है, ये मम्मा का कमरा है, या पेशेंट रूम है, और यहाँ खाना खाते थे या अनाज साफ करते थे। तो हम लोग बार बार सुन के फिर हम लोग भी वो बताने लगे सभी को। तो ये दीदी का मतलब एक लच्छू दादी का एक गुण था कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प थी, बहुत अच्छी। तो वो एक एक चीज मतलब कैसे रखते थे, क्या रखते थे, बेड कैसे था, वो हर चीज हमें बताते थे। फिर वो भी किस्सा बताया कि जगदीश भाई आए थे, तो कैसे बाबा ने उनको बोला कि एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है। तो 10 बजे राइट बंद हो गई, तो जगदीश भाई कैसे पोल के नीचे, इलेक्ट्रिक पोल मतलब जो गवर्नमेंट का, वहां जाके वो लेटर तैयार किया। लेटर तैयार करने के बाद जब सुबह मुरली हुई तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो जगदीश भाई के साथ जो चार लोग थे वो हंस रहे थे, देखा ये तो फालतू रात भर जग गया, कुछ तो काम हुआ ही नहीं, बाबा ने तो पूछा तक नहीं है। तो कैसे पहाड़ी पे पिकनिक करने गए, और वहां जब बाबा ने पूछा, बच्चे रात को एक काम दिया था किसने किया, तो सारे लोग को तो हैरान हो गए, सब लोग जगदीश भाई को देख रहे, जगदीश भाई के लिए, जगदीश भाई तो एकदम शांत बैठे थे उनको। तो ये सारे किस्से जो है वो लच्छू दादी, फिर कैसे, फिर जगदीश भाई को बाबा ने कैसे वरदान दिया कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की तुम मेन एडिटर रहोगे, लेखक रहोगे, तो ये बातें जो है वो एक्यूरेट लच्छू दादी हमें सुनाती थी कहाँ कब क्या हुआ। और कभी भी हम देखते थे कि कहीं बाहर जाते थे घूमने के लिए या कहीं प्रोग्राम भी होता था, जैसे शांतिवन में है, म्यूजियम में है, कहीं भी है, तो धीरे धीरे परिवार बड़ा होता गया। तो पहले तो एक कार थी तो उसमें एडजस्ट होते, लेकिन अभी लोग बढ़ गए तो फिर और दूसरे। लेकिन जहाँ भी दादी जाती थी वहाँ जरूर प्रोग्राम अटेंड करती थी, वहाँ जरूर जाती थी। और मैंने ये देखा कि दादी के साथ छाता रहता था, छाता, और छाता तुरंत ही, जैसे कहीं धूप होगी ना तुरंत दादी के पास जाके छाता खोलेगी, मतलब ये बहुत एक्टिव, क्योंकि खुद के लिए कुछ को जरूरत नहीं लेकिन खुद औरों की जरूरत बन के कैसे सेवा करती थी वो हमने देखा। तो पांडव भवन में भी जैसे शुरू शुरू में एरोप्लेन बन गया, तो हमें एक बार एरोप्लेन में,
एरोप्लेन माना बिल्डिंग रहने का, वो एरोप्लेन माना जो
एरोप्लेन बिल्डिंग का नाम है, जहाँ डाइनिंग है ना वो उसके बाजू में, उसका नाम बिल्डिंग का नाम, क्योंकि वो सबसे ऊंचा था,
सबसे ऊंचा,
जहाँ बाबा झंडा लहराते थे शिवरात्रि, स्वयं ब्रह्मा बाबा, तो जो दो मरगोल है ना गोल गोल, उसका बिल्डिंग का नाम था एरोप्लेन। तो वो बहुत जैसे कि हवा महल जैसा था, सब तरफ हवा आती थी, तो बाबा ने उसका नाम एरोप्लेन रखा था। तो वहां जाके कैसे बाबा कहाँ से आते थे, कैसे झंडा लहराते थे, तो एक एक बात वो है ना समझाते थे। और जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा तो ये ट्रेनिंग सेंटर का काम कितना बाकी था, तो बाबा ने लास्ट वीक में कैसे काम जल्दी जल्दी करो जल्दी जल्दी, तो लोग समझ नहीं पाते थे बाबा को क्या जल्दी पड़ी है बाबा। तो बाबा ने किसी को बोला, अरे बच्चे बहुत आने वाले घर में, बाबा के घर में बच्चे बहुत आने वाले, क्योंकि बाबा को तो पता है 18 जनवरी में शरीर छोड़ना है, तो उसके पहले बाबा ने ये जो ट्रेनिंग सेंटर का जो काम है ना बहुत फास्ट करवाया था। तो इस प्रकार दादी जी हर एक बात, जैसे जो शांति स्तंभ पहले नहीं था, वहां टेनिस कोर्ट था, वो खेलते थे, तो कैसे वहां कलेक्टर, जो हमारे जो कलेक्टर से परमिशन लिया, फिर जो हमारे पुलिस जो हेड होते हैं उनसे परमिशन लिया कि भाई, क्योंकि ऐसे कहीं भी अग्नि संस्कार नहीं कर सकते ना, परमिशन करके वही जगह फिक्स किया। तो ये सारी चीजें है ना दादी के एकदम माइंड में फिक्स और एक्यूरेट सब, तो वही चीजें फिर हमको अभी वो काम आ रही है। तो ये गाइड का काम जो है दादी बहुत अच्छी तरह से करती थी।
और दादी का हमने जीवन देखा बहुत निरहंकार है, कभी दादी का ऐसा लगा ही नहीं कि इतनी सरल रही पूरी लाइफ में, कभी वो दादी का भी जैसे वो उस तरह का बड़प्पन उनमें बहुत कम देखा। और कहते हैं दादी जो कोई भी कॉम्प्लेक्स के प्रोग्राम को छोड़ती नहीं थी, उनसे पूछा भी गया कि आप शांतिवन में भी कुछ होगा तो वो पहुंच जाएंगे, ग्लोबल हॉस्पिटल में कोई प्रोग्राम है, तो कहते थे कि ये जितनी श्रेष्ठ कार्य है उसमें अपने योगदान को नोंद करना जरूरी है, नहीं तो ये पार्ट फिर से रिपीट होना है, तो मैं हर अच्छे कार्य में अपनी प्रेजेंस देनी चाहती हूँ, क्योंकि ये ड्रामा नोंद है, हर कार्य जो है फिर से वो नोंद होना है, तो मैं अपना पार्ट उसमें ऐड करती हूँ, ऐसा दादी। और हमने आदि रत्नों में एक बात बहुत कॉमन देखी, जैसे हम किसी भी दादी को देखते हैं तो उनको देखते ही लगता है कि इनके जीवन में एक बाबा के सिवाय कोई है ही नहीं, माना प्रैक्टिकल वो अनुभव होता है कि इनका इनके जीवन में बाबा के अलावा कोई भी नहीं है। और नष्टो मोह स्थिति जो है वो माना एक जैसे उन सब में एक कॉमन लगती है, आपका क्या?
देखो जैसे कि हमने देखा कि जो यीशु दादी थी उनकी सगी बहन थी, सगी बहन, हमको 12 साल के बाद पता चला, मतलब इनका उनका बोलने का, जबकि वो साथ में रहते, वो प्रकाशमणि दादी के साथ जो जो भी हमारा लेन देन है, भंडारी है, वो सब संभालते थे, और लच्छू दादी का भोजन खिलाना दादियों के साथ, दूसरी जो सेवाएं है। और दूसरी एक चीज हमने देखा कि दादी की और एक सेवा, जो कुमार थे ना, कुमार जो पुराने कुमार, उनको याद होगा कि दादी वो चांदी की अंगूठी पहनाती थी, मतलब क्योंकि क्या होता था पहले, अंगूठियां तो बहुत होती है ना, माप नहीं होता था, तो फिर दादी पहले उनको माप लेती थी, माप लेके फिर उसको नाम लिख के अलग रखती थी, फिर दादी के पास जाके फिर दादी वो अंगूठी पहनाती थी। तो मैंने देखा कि कोई भी चीज होती है, जैसे यीशु दादी उनकी सगी बहन है, लेकिन हमको 10-12 साल के बाद पता चला, नहीं तो कोई भाई भाई हो बहन तो पता
वाइब्रेशन ही लौकिक
वाइब्रेशन, तो ऐसी अलौकिकता हमने नजर आई कि नहीं बाबा के बच्चे ठीक है, और वो भी यीशु यीशु ऐसे बोलते थे, और वो भी लच्चू लच्चू ऐसे ऐसे, मतलब कुछ काम होता तो ऐसे, तो लेकिन वो अटैचमेंट या इसको कुछ हुआ या हुआ कुछ गया ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल रूटीन में हम देखते थे। तो हमें फिर किसी एक भाई ने बताया रे इनकी वो सगी बहन है, तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ पहले तो। तो इस प्रकार से लच्छू दादी, और मैंने देखा जो भी शिवा मिली है वो पूरा उसके पर मैं देखते थे, जैसे ये भोग लगता था ना, भोग के बाद वो छोटे छोटे बर्तन चांदी के होते थे, कोई सोने का चम्मच होता था, ये होता था, तो दादी बराबर एक्यूरेट धुलाई करके फिर एक एक पोछ के व्यवस्थित, क्योंकि जब ये यज्ञ बड़ा हो गया फिर शांतिवन डायमंड हॉल में, तो कई लोगों ने बाबा इच्छा होती है ना कि बाबा को सोने के चम्मच से खिलाए, तो वो भी बर्तन कैसे संभाल के रखना हर चीज का, तो ये संभाल करने की जो चीज थी, और साथ साथ ये जो अपने कहा कि नष्टो मोह, कि किसी भी में ममत्व नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, इसने ये दिया बाबा को दिया, इसने ये किया बाबा को दिया, बस मुझे जो सेवा बाबा ने दी मुझे वो करनी है। और दादी के प्रति इतना स्नेह था, मोहिनी मनमोहिनी दीदी के लिए इतना स्नेह था कि जो कहे फिर रात दिन कुछ भी हो कुछ नहीं। और हमने देखते कभी कभी ये जो एक्स्ट्रा सेवा होती थी, जैसे बादाम पहले वो आते थे ना ऐसे, तो उसको तोड़ना पड़ता था, फिर उसको अलग करना पड़ता था ऐसे ऐसे, तो फिर हम लोग को बुलाती थी, आओ बच्चे लोग इधर आओ ये सेवा करो, तो सबसे सेवा कराना। तो इस प्रकार मिलनसार भी थी लेकिन नष्ट मुहा पक्की थी।
हम अवैध बाप दादा हम सबने देखा भोग खिलाते हुए दादियों को, वो थाली आप देखिए कैसे एक्यूरेट सजी हुई थाली, कोई ऐसा हर प्रकार के ड्राई फ्रूट हर प्रकार के फ्रूट कितनी सलीके से, ये जैसे उनकी एकाग्रता मन की भी, क्योंकि उनके बाह्य कार्य में पूरी जो एक्यूरेसी थी, चाहे भोग की थालियां भोग के कपड़े भोग लगाने की जो शैली वो एक्यूरेट थे। दादी से अंतिम मुलाकात का आपका
मैं समझता हूँ यही दिन थे, अगस्त मास था, और मुझे याद है 10 अगस्त दादी ज्ञान सरोवर में आई थी, 10 अगस्त को दादी ज्ञान सरोवर में आई थी। किस लिए आई थी बताएं? छाता लेने के लिए। यहाँ हमारा जो स्टोर है ना, यहाँ फोल्डिंग छाते आए थे, वहां तो बड़े होते थे उनके, तो दादी को पता चला यहाँ बहुत अच्छे छाते लाए है, तो आए थे, तो छाता लेके वो जा रही थी दौड़ते हुए, और मैं इधर से आ रहा था, उधर से डाइनिंग से आ रहा था, मैं समझता 11 बजे का टाइम, 11:30 का टाइम था। तो दादी जी को मैंने कहा, दादी इतना क्यों दौड़ रहे हैं आप? नहीं नहीं वो बस चली जाएगी मेरी, मतलब वो भी नहीं कि मेरे को कार चाहिए, नहीं वो जनरल जो बस है ना उसमें आती थी, बोलते नहीं मेरी बस मिस हो जाएगी, नहीं दादी हम छुड़वा देंगे कोई बात नहीं, आप भोजन करके जाओ। नहीं नहीं मेरे को वहां टाइम पे पहुंचना होता है, मेरी सेवा है। तो इतना निर्माण चित, इतना मतलब सरल, कि वो छाता लेने के खास आए और बस से आए और बस से चली देगी। तो मुझे याद है कि कितना मतलब उन लोगों में ये होता है कि इतना सारे डिपार्टमेंट के पास है सब कुछ है, तो भी वो नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए ये चाहिए वो चाहिए, और वो तो दादी को भी बोल सकती मुझे ज्ञान सरोवर जाना है गाड़ी चाहिए, तो भी कोई मना नहीं था। लेकिन जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज्यादा थी। तो हमारा एक भाई था वो जयेश, अभी नहीं हो यहाँ, तो उन्होंने ऐसे मजाक में एक गीत गाया था, क्या लच्छू नानी कंजूसी छोड़ दे, ऐसा कुछ गीत गाया था, बहुत सब लोग इतना हंसते थे वो जो, क्योंकि हमारे जो लच्छू दादी के अंदर इकोनॉमी के इतने संस्कार थे, अगर आप कोई चीज रेनकोट उनसे लेके गए तो आपको रेनकोट पुराना वाला वापिस देना है, फिर वो नया वाला देगी। फिर हम बोलते ये पुराने का क्या करेंगे, बोल रहा हमारे पास लेबर है ना बेचारे भीगते, उसको देंगे ना, तो वो यूज होता था। देखो उनकी उसमें भी कितनी पॉजिटिविटी थी, कोई चप्पल होती थी पुरानी होती थी लोग ऐसे फेंक देते थे, तो बोलते नहीं पुरानी लेके आओ, तो पुरानी चप्पल लेते थे फिर वो नया देते थे,
लेकिन
पुरानी यूज कर मजदूरों को फिर देते थे ऐसे। तो इस प्रकार से उसके अंदर ये बहुत गुण थे, मतलब कोई भी चीज अगर आपको बोलेंगे ना दादी ने इसको 10 बादाम देने बोला, 10 बादाम ही देगी, 11 नहीं देगी। तो ये इसलिए कई कई लोग इसलिए मजा भी करते थे इसे। तो इस प्रकार से निर्माण चित थी और अंदर से उनके मतलब साफ दिल की थे एकदम,
और अंत तक एक्टिव रहे कभी भी। हमने ये सुना एक भाई से कि शरीर छोड़ने से एक दिन पहले भी वो गिनती करा रही थी भाई को कि ये 19 आदि रतन बचे हैं, बोले हमें ही नहीं पता था कि ये कल छोड़ के जाने वाले, माना उन्होंने अंत तक उनका तन बहुत स्वस्थ था। और जैसे ग्लोबल हॉस्पिटल भी मैं समझता हूँ 30 साल हो गए, वहां के लोगों का भी कहना था कि कभी लच्छू दादी कभी एडमिट नहीं हुए, इवन वो किसी से मिलने भी आती थी पेशेंट से, तो जैसे उनको कहते थे कि हम गाड़ी मंगा लेते हैं वापस जाने के लिए, तो वो हमेशा पैदल जाती थी ग्लोबल से पांडव भवन।
वो एक्चुअली उनमें क्या था, मैंने भी देखा 1983 से 2010 तक हमने कभी उनको बीमार होते हुए देखा ही नहीं, एकदम चुस्त, कभी कुछ सर्दी खांसी कुछ, बहुत एक्टिव रहती थी।
एक काम की चीज बता दें, वो हमेशा कढ़ी पत्ते सुखा के उसका पाउडर बना के रखती थी, और हमेशा कढ़ी पत्ते दही के साथ, क्योंकि कढ़ी पत्ता गर्म है तो दही के साथ हमेशा वो लेती थी, और कहती थी इसमें नेचुरल कैल्शियम है, नेचुरल एंटीबायोटिक है, और उससे ये इससे मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, आप सबके ध्यान में भी रहे।
तो लेकिन मैंने एक चीज नोट किया था कि दादी ने 25 अगस्त को शरीर छोड़ा, प्रकाशमणि दादी 2007 में, उसके बाद उनके अंदर है ना एक अलग से, मतलब नहीं जैसे दादी गई मतलब वैराग वृत्ति से धीरे 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 सब सेवाएं आदि सब करती थी, लेकिन मन में है ना उनके थोड़ा सा रहता कि हमारी दादी गई करके। तो धीरे धीरे मैंने देखा कि ये 2010 की बात है कि दादी को थोड़ा सा दर्द हो गया, तो हॉस्पिटल ग्लोबल में लेके गए, वहां से अहमदाबाद लेके गए, और वहां आते आते उन्होंने शरीर भी छोड़ा, मतलब एक दिन में किसी से सेवा नहीं ली उन्होंने, मतलब हंसते चलते
81 साल उम्र रही,
81 की उम्र में हंसते खेलते बात करते, हम लोग को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सचमुच शरीर छोड़ा है क्या, सचमुच कंफर्म कर रहे थे सचमुच शरीर छोड़ा है क्या। फिर मैंने देखा कि जब अंतिम संस्कार, क्योंकि हम लोग अनाउंस करते हैं ना मधुबन में ज्ञान सरोवर में, भाई 9:30 बजे मधुबन में चार धाम की यात्रा के लिए ग्लोबल हॉस्पिटल में रखा था, तो क्या हुआ हम लोग निकल रहे थे तो हम इतनी बारिश जोर से, हम कार भी चला नहीं पा रहे थे इतनी बारिश हो रही थी, तो सबके मन में आया लगता है आज चेंज करेंगे अंतिम संस्कार का समय चेंज करेंगे। तो हम लोग पांडव भवन पहुंचे वहां, तो इतने में क्या हुआ एम्बुलेंस आई पांडव भवन के गेट पे, जैसे वो पार्थिव शरीर को लेके ग्लोबल हॉस्पिटल से पांडव भवन के गेट में आई, अचानक सूरज का दर्शन हो गया और इतना तेज धूप हो गई, जो बारिश के लिए जिन्होंने छाते खोले थे अब वो छाता धूप के लिए खोले, इतनी बारिश मतलब इतना धूप हो गई, और एकदम जैसे कुछ बारिश हुई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। फिर बराबर फिर जैसे अंतिम संस्कार, जैसे चारों धाम की यात्रा करते जाते उस प्रकार से यात्रा हुई, तो वे मैंने देखा कि जैसे चमत्कार, हमें तो चमत्कार लगा कि भाई कहाँ हम सोच रहे कि आज मुश्किल है अंतिम संस्कार होना, इतनी जोर से बारिश, हम जब रास्ते से जा रहे थे हमारे गाड़ी चलाना मुश्किल, कोई इतना पानी आया था, और अचानक कैसे चेंज। तो बाबा कहते ना कि कैसे प्रकृति जीत, हाँ प्रकृति को भी अपने अधीन कैसे रखना, तो ये आदि रत्नों में खासियत थी, ये आदि रत्नों में विशेषता थी। तो ये हमने प्रैक्टिकल अनुभव देखा, और क्योंकि वो भी हमारे एक किस्सा है, उसी दिन हमारा एक भाई मतलब वहां अंतिम संस्कार करके गए थे, और वहां से वो ये तालाब में हमारे नहाने के लिए भाई गया था। और उसी दिन उसका मतलब वो ये हुआ था, तो यादगार दिन मतलब सबको याद रहता है। तो ये चीज हमने दादी के अंदर देखी कि बड़ों के प्रति प्रेम, बाबा के प्रति प्रेम, और वैसे भी अपनी सेवा में अलर्टनेस, सेवा एक्यूरेट टाइम, और प्रकृति को भी कैसे अपनी दासी
संभाल कैसे की।
तो ये हमने प्रैक्टिकल, तो सचमुच हम उनके कितने गुणगान करें, उनके लिए कितनी शुभेच मतलब हमारी शुभ भावनाएं मतलब कितना करे, तो आज भी वो हमारे हाँ यहाँ भी देखो दो नंबर में वो अभी वहां भी खड़े हैं। तो बहुत ही उनको श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं।
थैंक यू सुभाष भाई, आपने हर पहलू को दादी के स्पष्ट किया, और दादी के ऐसे त्याग में जीवन को, क्योंकि कहते हैं ना नंबर वन ऑनेस्टी, नंबर वन प्योरिटी, और इकोनॉमी में नंबर वन। तो हम सब भी उनके चरित्र को हम अपने जीवन में उतार कर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि व्यक्त में नहीं पर अव्यक्त रूप में वो सब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सुभाष भाई।
तो हम सभी मिलके उनको याद में, हम सब मिलके उनके यादों में, जैसे हमारी लच्छू दादी है, उन्होंने जो बाबा के साथ 5 मतलब 6 साल से लेके 81 अपने यज्ञ में पूरा जीवन व्यतीत किया, तो ऐसी महान विभूति के लिए हमारे सभी हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते योग के द्वारा।